की ये प्रोग्राम है पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का।
मुअज़्ज़ज़ सामईन, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का आज का प्रोग्राम इंसानी हुकूक के पासदार अब्दुल सत्तार एधी के नाम।
मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं, बोले कहें सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला इसका काम है उठा के उसको दाखिल कर। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने जिंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई, लवरसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगू यह भी मेरी कोई नियत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पर खड़ा रहकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक नहीं थी। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम।
अब्दुल सत्तार एधी और उनकी टीम ने मैटरनिटी वार्ड्स, मुर्दा खाने, यतीम खाने, शेल्टर होम्स, ओल्ड होम्स बनाए। एधी साहब की शरीक हयात बिल्किस एधी को अपनी झूला सर्विस पर सबसे ज्यादा फख्र है। यहाँ डाले गए लावारिस बच्चों को गोद लिया जाता है। इस इदारे का सबसे मुमताज हिस्सा इसकी 1500 एम्बुलेंसेज हैं। मकसद उन लोगों की मदद करना था जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते। मजहब से बालातर होकर इंसानी अकदार को फरोग देने और लोगों को बाइख्तियार बनाने का मुश्किल हुनर एधी साहब ही को आता था, इसीलिए शायद उन तमाम लोगों की जबां पर जिनसे सादत अली खान ने बात की, तारीफ है, तौसीफ है एधी साहब के लिए।
इंसानियत को ज़िंदगी बख्शने वाले एधी साहब, मुर्दा रगों में जान डालने वाले, जिनके चूल्हे ठंडे उन चूल्हों को जलाने वाले, उनकी ज़िंदगी को रोशनी देने वाले, हादसात में जो इंसानियत की खिदमत, उनके डेड बॉडियों को दफनाने का उन्होंने इंतजाम किए हैं, उनकी तमाम खिदमात को हम याद करें तो गुमशुदा बच्चे हो गए, लावारिस लाशें, हादसात में लाशों का कफन दफन का बंदोबस्त, ये एधी साहब का एक ऐसा कारनामा है जो पाकिस्तान में कभी कोई सर अंजाम नहीं दे सका। दुखी इंसानों की खिदमत के लिए जो उन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए, किसी से छुपे नहीं हैं।
वो एक हमदर्द इंसान थे और हर एक के दर्द को, ख़ास तौर पर गरीब आदमी के दिल के दर्द को अच्छे तरीके से जानते थे और समझते थे। और उनकी पूरी ज़िंदगी में जहाँ तक हमने देखा है, उनकी यही कोशिश हुई है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब आदमी है ना, मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ। अभी तक वो कहते थे कुछ कर जाऊँ, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया इंसानियत के लिए। अपनी ज़िंदगी में वो उन्होंने सारा सेटअप तैयार कर लिया था, उसी हिसाब से सबकी ड्यूटियाँ लगा दी थी और वो उसी हिसाब से मिशन जो है ना वो बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। और खुदा की ज़ात की भी ख़ास करम नवाजी है कि उनके मिशन को खुदा ने खुद ही इसी हिसाब से कि उनकी मेहनत जो है ना वो अब रंग ला रही है, अब से ज़्यादा बेहतर है, पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। इंसानी हमदर्दी के लिए वो ज़्यादा ना कोशिश में रहते थे और परेशानी उनको ज़्यादा यही थी कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर जाऊँ।
मेरा उनके साथ पिछले 30 साल से ताल्लुक है। उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की है उसकी कोई मिसाल नहीं है और ना मिलेगी पूरी दुनिया में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी ना इंसानियत की खिदमत के लिए वक्त कर रखी थी। इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसे लाजवाब काम किए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम तो आज भी उनको याद करते हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और ताकि अमत ये लोग खिदमत करते रहेंगे, ईडी साहब के मिशन को जारी रखा। उनकी बेगम तो उनके साथ उसी वक्त की साथ हैं, तो अब भी खिदमत कर रही हैं, उसकी तो कोई मिसाल नहीं। इंशाल्लाह फैसल ईडी साहब भी ईडी साहब का मिशन जारी रखेंगे और हम उनके साथ भरपूर तावन करेंगे इस सिलसिले में। ईडी साहब के अब ये कहने पर ही उन्होंने ये लंगर का सिस्टम किया। कराची में तो पहले ही का चल रहा था, लेकिन लाहौर में भी पिछले कोई 15 साल से ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग भी हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो मैं चाहता हूँ कम से कम वो एक वक्त का खाना पेट भर के खाएं, ताकि उनको ज़रूरत ना महसूस है कि मैं भूखा सो रहा हूँ। इन्होंने ये इसलिए सिलसिला जारी रखा और जारी है और जारी रहेगा। ईडी साहब ने एक स्टूडेंट था जो UET का था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने मिलकर ईडी साहब से रब्ता किया। वो स्टूडेंट जो था ना, वो कैंसर का मरीज था। ईडी साहब को उन्होंने रब्ता किया, ईडी साहब ने कहा मैं कल ही वापस आ जाऊंगा लाहौर और इसके लिए भी एक मिशन करूंगा। और माल रोड पे खड़े होकर उन्होंने उसको बच्चे को ज़रूरत थी कोई 25 लाख की, उन्होंने 30 लाख 3 दिनों में इकट्ठा करके दिया और उन बच्चों के हवाले किया जाए, उसका इलाज कराएं। उसने लंदन में इलाज करवाना था, उन्हें कहे हमें तो बस 25 लाख की ज़रूरत है। कहती ये बच्चे के लिए मैंने जमा किया है, अपने लिए नहीं किया, ये इसी का है, हो सकता आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। उन्होंने कहा था जो ज़िंदगी है वो तो खुदा के हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। जमीर अहमद, सर्कल इंचार्ज हूँ ईडी वेलफेयर सेंटर।
हम सर जब ऐसा कोई वाकया आता है, हमें ड्यूटी मिलती है, हमारा जज्बा जो है बढ़ जाता है। हमने जहाँ आधे घंटे में पहुँचना होता है, हम कोशिश करते हैं हम 5 मिनट में पहुँच जाए। और जिस मरीज़ को जिस अस्पताल में लाया जाता है उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको पैसा नहीं मांगते, तो कहते हैं ठीक है, वो अगर कोई देना पड़ता है महकमे को तो आपने जेब से डाल देते। जी मैं पहले प्राइवेट नौकरी करता था, मेरी वालदा की टांग टूटी थी। एम्बुलेंस वाले शाहदारा मोड़, उनसे पूछा था कि मैंने वालदा को फोर्ट अब्दर मालक से मेयो हॉस्पिटल ले जाना है, उनने मुझसे 2000 रुपया मांगा था। तो मुझे किसी ने बताया कि 115 पे कॉल करो, मैंने 115 पे कॉल की ईदी वालों को, इनने मुझसे 200 रुपया मांगा फोर्ट अब्दर मालक से। उस दिन का मैंने ये अपने जहन में सोच लिया कि मैं भी ईदी एम्बुलेंस में काम करूँगा और हो सके तो अवाम की खिदमत भी करूँगा। मोहम्मद अरशाद भट्टी।
ईडी साहब जैसा शख्स कहाँ मिलेगा भाई, वो नहीं पैदा हो सकते रोज रोज। इस कौम का जब भी कोई मिला और चला गया फिर कहते हैं बहुत अच्छे थे, और जब होते हैं तो कदर नहीं हम करते। 60 साल जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और अब जो देख रहे हैं उससे शर्मिंदा है कि वो कौम कहाँ गई 30-40 साल पहले थी। ब्लड भी वही है, हर चीज वही है, खानदान भी वही है।
उनके जाने की कमी तो हर किसी को महसूस होती है, लेकिन लोग इसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और इनों का मिशन जो है इसी तरह से चलता रहेगा और चलता हुआ नज़र भी आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। ऐसे ही हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सारी आवाम जो है उनके मिशन को आगे चला रही है। डॉक्टर सज्जाद,
इसी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है, इंसानियत और दोस्ती। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो इसी काम पर लगाई है और हर चीज़ उन्होंने अपनी मतलब के फैमिली लाइफ और बाकी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके उन्होंने सारा कुछ ये किया है। तो इनसे बड़ी एग्जांपल और कोई हो नहीं सकती हमारे लिए, और इनसे बड़ी आइडल भी हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है एज अ पाकिस्तानी, जो है पाकिस्तानी क्या एज अ इंसान भी। मतलब कि इनके कोर्ट्स वगैरह अगर आप पढ़ें कि इंसानियत जो रिलीजन वाले रिलेटेड कोर्ट्स हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े इंस्पायरिंग हैं हम जैसी जनरेशन के लिए सबको।
ईडी साहब की दोस्ती में तो कोई शक ही नहीं है ना, और अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब किसी और को इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए ताकि ये वाला जो उनका मिशन था वो कंटिन्यू करे और सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो, इंसानों को भी होगा और इंसानियत को भी होगा और पाकिस्तानियों को भी होगा इंशाल्लाह।
ये कौम के हीरोज़ होते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम ये रिवाज है कि वी डोंट सिंग आवर हीरोज़। छोटे छोटे काम भी करें, इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया, तो इनकी मिसाइल को मीडिया में कायम रखना चाहिए, किसी ना किसी को इंस्पायरेशन मिलेगी। आपका रोल है ये सोसाइटी के पॉजिटिव फेस को भी दिखाना, इंसानियत की खिदमत, ये बड़े बड़े बोल है। उन्होंने एक छोटे से स्केल पे एक पॉजिटिव काम शुरू किया है और अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी या उनको जितना स्ट्रेच कर सके वो अपने आप को स्ट्रेच करते रहे। आप पॉजिटिव काम करना शुरू करें, इनकी मिसाल है, ट्रस्ट करते हैं लोग।
ईडी साहब जो गरीबों के लिए खास तौर पर एक बात कहा करते थे, कहते कि मैं किसी गरीब आने वाले को नो नहीं कह सकता, यानी हर आने वाले दुखी की वो बात सुनते थे और उनकी मदद भी करते थे। सबसे बड़ा उनका ये ना एक कारनामा था कि हर आने वाले के दुखों पर मरहम रखते थे। जाहिदुज़्ज़मान,
ईडी साहब के पास जो भी आदमी आया ना उसके साथ उन्होंने नहायत शायस्तगी के साथ पेश आए हैं, एक दफ़ा इस तरह हो गया, कोई एक आदमी आया उनके पास, तो वो उसने काफ़ी डोनेशन देनी थी, तो वो उसके साथ आके उन्होंने वो डोनेशन जो है वो पास खड़े होकर उन्होंने डोनेशन ली, उन्होंने दी, लेकर लिया कि इसके बाद वो बड़े खुश हुए और दुआ की कि ये अल्लाह करे ये मेरा जो काम है ना ये चलता रहे, इसी तरह चलता रहे। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आँखें उन्होंने दी है ना, उनकी आँखों से हर बंदा देखे तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क सवर सकता है, क्योंकि उनकी आँखें जो है ना वो हर गरीब आदमी के ऊपर जो है ना वो फिक्स थी।
इंसानी हुकूक के कुछ पैगाम सुन लीजिए। सिर्फ एक नस्ल ठीक है जो हमारी नस्ल है,
सिर्फ एक ज़बान ठीक है जो हम बोलते हैं,
सिर्फ एक राय ही ठीक है और वो हमारी राय है।
क्या ये रवैया माशरे के लिए ठीक है?
नहीं, इख्तलाफ रहमत है, जिंदगी में रंग भरता है, माशरे में तनव्वो पैदा करता है।
इसे एक असासा समझना चाहिए। हर एक नस्ल, हर एक ज़बान, हर एक राय को एहतराम देना ही माशरे को अच्छा माशरा बनाता है।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान,
लोग रंग रंग,
बोलियां अलग अलग,
रहन सहन जुदा जुदा,
जैसे गुलशन में फूल दरख्तों पर परिंदे,
इसी फर्क में तो जिंदगी है, खूबसूरती है।
सब सोचों, सब रंगों, सब लहजों का एहतराम,
सबके इंसानी हुकूक का बराबर एहतराम होगा
तो सब एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे,
साथ चलेंगे एक मंजिल की जानिब,
सब एक होंगे।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
तामीर जहां इंसान आजाद हो, जहां हो बराबरी का निजाम, जहां सबका राज हो, सबको जहां पे सब कुछ मिले, हर एक खुशहाल हो, जहां ना अमीर हो ना गरीब हो मुसावात हो।
मैं हूं जवाद अहमद, आपका भाई, आपका दोस्त।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
अपनी सवाने हयात अ मिरर टू द ब्लाइंड में एदी साहब ने लिखा कि मुआशरे की खिदमत मेरी सलाहियत थी, इसे मुझे सामने लाना था। जाहिदा हिना दानिश्वर हैं, हालात हाजरा और मुआशरती मौजूआत पर लिखती हैं। अब्दुस्सत्तार एदी के लिए क्या कहती हैं, इन्हीं की जबानी सुनिए।
फरवरी 1971 में मेरे वालिद का इंतकाल सिविल हॉस्पिटल में हुआ रात को, और उस जमाने में ये सेंट जॉन्स की एम्बुलेंस होती थी, वो एक या दो एम्बुलेंसें थीं जो सारे शहर में फिरती थीं, और वो भी बहुत ही नाकारा और खड़कल सी थीं। तो मैं एक एम्बुलेंस में वालिद की लाश लेके चली और वो सिविल अस्पताल से निकली है और रेडियो पाकिस्तान के पास खराब हो गई, यानी मुश्किल से मील डेढ़ मील के फासले के बाद। अच्छा, अब उस जमाने में ना मोबाइल होते थे ना और सहूलतें थी, तो मुझसे उसने जो ड्राइवर था, जो कि क्रिश्चियन ड्राइवर था, उसने मुझे बहुत तसल्ली दी, कहा कि बीबी तुम बैठो, मैं दूसरी एम्बुलेंस लेके आता हूँ। तो मैं रेडियो पाकिस्तान के सामने कोई घंटा सवा घंटा अपने वालिद की मैयत के साथ बैठी रही था ना, रात के अंधेरे में, कोई उस वक्त 3 या 4 बजे का वक्त था। फिर वो लेके आया, फिर हम उसे अब्बा को लेके गए, मेरा घर वहाँ से करीबी था, پونے دو میل کے فاصلے پہ تھا جہاں پہ ایمبولینس خراب ہوئی تھی. اور اگر اس زمانے میں ای ڈی صاحب ہوتے اور ای ڈی صاحب کی ایمبولینسیں کام کر رہی ہوتی تو مجھے یہ ذاتی طور پر یہ صدمہ یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑتا. ایسے ہی ہزارہ لوگ ہیں جن کی گردن پہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بر وقت مریضوں کو پہنچایا ہسپتال, بر وقت وہ لوگوں کی میتیں لے کے ان کے رضاکار گھروں کو گئے. بڑے بڑے کراچی نے تو بڑے بڑے صدمے دیکھے ہیں, بڑے بڑے صدمے جھیلے ہیں. ایک ایک وقت میں سینکڑوں لاشیں گرتی تھیں, دھماکے ہوتے تھے اور ایڈی صاحب ہر جگہ موجود ہوتے تھے, ان کے رضاکار موجود ہوتے تھے, ان کا جو ایمبولینس کا نیٹ ورک تھا وہ کام کر رہا ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو اٹھا کے جو ختم ہو گئے تھے ان کو لے کے جاتے تھے, جو مجروح تھے زخمی تھے انہیں ہسپتالوں میں پہنچاتے تھے. ایسا ہے کہ ایڈی صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے نادر ہوتے ہیں اور حقوق انسانی کے لیے اور انسانوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ بے مثال ہے. ان کی جو سب سے بڑی خدمت ہے, مجھے نہیں معلوم لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں, لیکن حقوق انسانی کے لیے تو ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مہم چلاتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ شہرت بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن ایڈی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں ایک ایسا راستہ چنا جو بہت مشکل تھا اور جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمارے یہاں ہمارے مسلم سماج میں, کہ وہ حقوق انسانی جو مطلب چھوٹے بچوں یا جوانوں یا بوڑھے لوگوں مردوں عورتوں کے لیے جو انہوں نے لڑائی لڑی وہ تو لڑی, لیکن ان کی میرے خیال میں اصل لڑائی وہ تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نامطلوب بچے کوڑوں کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ اگر زندہ ہوتے ہیں تو چوہے اور بلی اور کتے انہیں کھا جاتے ہیں. اس کے لیے ایڈی صاحب نے جو اپنا وہ اسکیم چلائی جھولا اسکیم, کہ بھائی آپ کو اگر کوئی بچہ نامطلوب ہے تو اسے قتل مت کیجیے, کیونکہ قتل انسانی جان کا قتل بہت بڑا عظیم گناہ ہے, آپ اسے جھولے میں ڈال دیجیے, ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کون ہے, کہاں سے آیا, اس کے ماں باپ کون تھے. ہمارے سماج میں جو اس وضع کے بچوں کے لیے جتنی نفرت اور جتنی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اور یہ وہ بچے تھے کسی بھی طرح اب وہ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, وہ بالکل معصوم بے زبان بچے تھے اور وہ انسان تھے, اور ایڈی صاحب نے ان کے حق کے لیے جو لڑائی لڑی اس کے لیے ان کو جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں, جتنی گالیاں سننی پڑیں اور جتنا انہیں برا بھلا کہا گیا اس کا آپ اور میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتی. انہیں کافر کہا گیا, انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا ملک میں فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ ایک غلط آدمی ہے. تو ایسا آدمی جس قدر تنہا ہوتا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو ایک خدمت کر رہا ہے انسانیت کی, حقوق انسانی کے لیے کام کر رہا ہے, ان بچوں کے لیے کام کر رہا ہے, ان کی جان بچانے کے لیے کام کر رہا ہے, جو بے زبان ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اور جو نامطلوب ہیں سماج کو. یہ ان کی جتنی بھی انسانی حقوق کی خدمات ہیں اس میں میرے خیال میں یہ ان کی سب سے بڑی خدمت ہے جو انہوں نے کی, اور جس کے لیے انہیں اور ان کی بیگم بلقیس ایدھی کو مسلسل ہدف تنقید بنایا گیا, بہت تحقیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسے یہ سمجھا گیا کہ وہ کوئی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کفر کے زمرے میں آتا ہے, جو غیر اسلامی ہے. تو ایک ایسے شخص کی اگر ہم تنہائی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے یہ مشکل مراحل کیسے گزارے ہوں گے, کیسے رہے ہوں گے, اس کے اوپر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حقوق انسانی کے معاملات بھی بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان کہ جو بات حقوق انسانی کی کرتے ہیں, اس کے لیے لڑتے ہیں, اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیش منظر میں آئے, لوگ انہیں جانیں, انہیں پہچانیں اور ان کی تعریف و توصیف ہو. इन्होंने तो ऐसी लड़ाई लड़ी है हुकूक इंसानी की, जिसमें एक तरफ वो लोगों को वो पहुंचा रहे थे, एम्बुलेंस की सहूलत पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ वो उन्हें उनका इलाज मुआलजा कर रहे थे, वो जो लावारिस लाशें थी उन्हें अपने हाथ से उठा के लाते, उन्हें गुस्ल देते, उन्हें कफन दफन की सहूलत देती और फिर उनको दफन कर देते। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां थीं, ये के बड़े बड़े हादसों में वो घुस जाते और लाशें चुनते और खून में डूबी हुई लाशें या निमुर्दा लोगों को अपने हाथों से उठाते, अपनी एम्बुलेंसों में लेके आते और करीब तरीन इसी सेंटर जाके आखिरी उनकी जो रस्मात थी वो अपने हाथ से अदा करते। वो ये भी करते थे कि लावारिस लोगों की तस्वीरें उतरवाते और उन्हें अपने सेंटर की दीवारों पर नुमाया तौर चस्पा कर देते। उनके रजाकार भी उनके साथ साए की तरह लगे रहते थे और इजी साहब की ये भी कोशिश होती थी कि वो इन लावारिस लाशों को चंद दिनों तक सरखाने में रखें ताकि अगर वरसा अपने प्यारों को ढूंढते हुए पहुंचे तो वो कम से कम उन्हें ये दिलासा दे सकें और उन्हें ये इत्मीनान हो सके कि उन्होंने अपने लोगों की लाशें अपने आंखों से देख ली और उन्हें सब्र आ जाता था। ईरी साहब ने कराची से लेके और पूरे पाकिस्तान में जो नेटवर्क उनका था खिदमत इंसानी का और हुकूक इंसानी के तहफ़ का, मेरा ख्याल है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने ये भी किया कि जो जंगजदा इलाके थे दुनिया के, उनमें भी वो अपनी जान हथेली पे रख के गए। वहाँ उन्होंने खुश्क राशन, दवाएँ और लिबास बहम पहुँचाया। उनके दुश्मनों ने कभी उन्हें इसराइल का और कभी हिंदुस्तान का एजेंट कहा, लेकिन उन्होंने इन बातों की कोई परवाह नहीं की। और ये भी कहा गया कि भाई ये जो लाशें दफन करते हैं लावारिस, तो ये दरअसल के गुर्दे निकाल के भेज देते हैं। मतलब कौन सी वो थी बुराई जो उनसे मंसूब नहीं की गई, कौन से दुश्नाम और इल्ज़ाम से इजी साहब महफूज रहे। और उनके साथ हमें ये दाद देनी होगी बिल्किस ईदी की, जो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी और जिन्होंने अपनी जवानी ईदी साहब के साथ हुकूक इंसानी की खिदमात में लगा दी। और उन्होंने यही किया कि वो अगवा होने वाली बच्चियों को या घर से भाग जाने वाली बच्चियों को जिस तरह सीने से लगा के रखते दोनों मियां बीवी, और उसके बाद उनके वरसा तक पहुँचाते। तो ये तमाम वो मामलात हैं, ये तमाम वो काम हैं जिन्हें अगर हम देखते हैं, जिन पर अगर हम एक नज़र डालते हैं, तो यही हमें अंदाज़ा होता है कि वो हमारे मुल्क में हुकूक़ इंसानी के हवाले से काम करने वाले सबसे बड़े इंसान थे। और उनका मुतबादल अगर कोई पैदा हो जाए तो हम बड़े खुश नसीब होंगे। ईदी साहब ने ज़िंदगी भर कभी ये फ़र्क नहीं किया कि ये शख्स जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ, इसकी सिंफ क्या है, जिन्स क्या है, मजहब क्या है, मसलक क्या है, रंग क्या है, ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ये कौन सी ज़बान बोलता है, ये सारे उनके मामलात थे ही नहीं। वो इंसान के लिए काम करते थे, उनका दिल इंसान के लिए दुखता था और वो इंसान को अजियत में नहीं देख सकते थे। तो ये जो है इतना बड़ा काम था उनका, जिसके लिए हम उन्हें जितनी भी दाद दें वो कम है। और मेरा ख्याल है कि उनको हम दाद इसी तरह दे सकते हैं कि उनके काम को आगे बढ़ाएं। हम लोग जाहिर है उनकी उसको तो नहीं पहुंच सकते, इसे कहना चाहिए उनकी बुलंदियों को, लेकिन हम अपने तौर पर कुछ भी अगर हम करके आगे बढ़ा सकते हैं उनके काम को, तो ये एक बड़ी बात होगी। और उन्होंने यानी वो एक बहुत ही शरारती बच्चे के तौर पर अपने बचपन में मशहूर थे, लेकिन जब वो अपनी माँ के ज़ेर असर और अपनी माँ का उन्होंने दुख देखा और उसके बाद वो जब निकले हैं काम करने, तो वो सारी दुनिया में एक नहायत संजीदा और तर्क दुनिया करने वाले एक ऐसे आदमी के तौर पर मशहूर हुए जिसने अपने लिए तो दुनिया तर्क कर दी थी, खुद तो वो सिर्फ मलेशिया के सलेटी रंग के एक कुर्ते में घूमते थे। अच्छा जूते जो थे उनके पास नहीं थे, चप्पलें वो इस्तेमाल करते थे और वो भी उन लोगों की जो किसी हादसे में या किसी सानहे में हलाक हुए हों और उनके पीछे उनकी چپلیں رہ گئی ہوں, ان میں سے وہ اپنے لیے چپلیں چنتے تھے اور وہ پہنتے تھے. یعنی ایک طرف ترک دنیا کی یہ انتہا تھی, دوسری طرف انہوں نے کروڑوں روپے لوگوں کے لیے اکٹھا کیے. ان کے پاس فنڈز کم پڑ جاتے تھے تو وہ سڑک پہ بیٹھ جاتے تھے کہیں پر بھی, جھولی پھیلا کے ایک چادر بچھا کے, اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ عیدی صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو ہم ان کی یاد کرتے رہیں گے اور ہم اس بات پہ فخر کرتے رہیں گے کہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسا شخص پیدا ہوا جسے اگر ہم ولی کہیں تو غلط نہ ہوگا. بڑا کانٹریبیوشن ہے. عیدی صاحب چلے گئے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ اب ہمیں کوئی ایسی کسی شخص کی چھتر چھایا ملے گی یا نہیں ملے گی.
عبدالستار عیدی کے لیے عقیدت کے الفاظ یہ تھیں زاہدہ ہنا. اور اب شعر کا ذریعہ اظہار شاعر ہیں عمران نقوی.
مسافر شہر خاموشن وہ جو ایک تازہ قبر روشن ہے, مسافر شہر خاموشن وہ جو ایک تازہ قبر روشن ہے, یہ پھولوں سے محبت اور دلوں پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ ستار عیدی کا مقام استراحت ہے. یہ پھولوں سے محبت اور دلوں پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ ستار عیدی کا مقام استراحت ہے. عجب انداز سے یہ دل زدوں کا تاجور رخصت ہوا ہے, عجب انداز سے یہ دل زدوں کا تاجور رخصت ہوا ہے کہ اشکوں اور پھولوں کا تفاوت مٹ گیا ہے. زندگی اور موت کی تفریق اوجھل ہو گئی ہے کہ اشکوں اور پھولوں کا تفاوت مٹ گیا ہے. زندگی اور موت کی تفریق اوجھل ہو گئی ہے. مسافر ہم زمین والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلتے ہیں تو پاؤں کے نیچے خاک کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں. مسافر ہم زمین والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلتے ہیں تو پاؤں کے نیچے خاک کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں. بھلا یہ درد دل کی بے بہا دولت کہاں ارزانی ہوتی ہے, بھلا یہ درد دل کی بے بہا دولت کہاں ارزانی ہوتی ہے. کسی مٹی کے پتلے پر محبت اور عقیدت کی بہاریں کیوں برستی ہیں, کسی مٹی کے پتلے پر محبت اور عقیدت کی بہاریں کیوں برستی ہیں. اگر اس راز کو تم پا سکو تو مجھ کو بھی ہمراز کر لینا.
انسانی حقوق کے موضوعات پر مضامین اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی سرگرمیوں کی رپورٹس کے لیے پڑھیے ہمارا ماہنامہ جہد حق. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا پروگرام آپ ہر ہفتے اور اتوار کی دوپہر 12:30 بجے سنتے ہیں. آپ کی رائے, آپ کے تبصرے ہمیں اس پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے. ہمیں ای میل کریں hrcpradio@gmail.com یا خط لکھیں اس ایڈریس پر بات حق کی, پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق, 107 ٹیپو بلاک, نیو گارڈن ٹاؤن, لاہور.
اور اب پروڈیوسر سعادت علی خان اور مجھے یعنی فقار مصطفیٰ کو اجازت دیجیے.